और आज नंबर है गाथा नंबर 14, मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणेन्द्र वर्णी चंद मकलंकम गुणरयन भूषण जीवस्य परोहणम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की कृति है गोमठ सार जीवकांड, जिसको उन्होंने गोमठ राय राजा अर्थात चामुंड राय के निमित्त से रचा। उन्होंने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाई और उनका नाम गोमठ था, इसलिए बाहुबली का नाम पड़ा गोमटेश्वर। और उनके निमित्त को लेकर के आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने षट्खंडागम के ग्रंथ के सार को उन्हें समझाने के लिए गोमठ सार जीवकांड और गोमठ सार कर्मकांड नाम के ग्रंथ की रचना की। यह हमने गोमठ सार जीवकांड स्वाध्याय के लिए लिया है। अभ्यात्माओं, इस गोमठ सार जीवकांड के अंदर कुल 734 गाथाएं हैं और उन 734 गाथाओं में बहुत विस्तृत वर्णन जीव द्रव्य का है। पूज्यगणनीय ज्ञानमती माताजी ने उस जीव कांड के संपूर्ण ग्रंथ को आलोकन करके उसके सार रूप केवल 173 गाथाओं में गोमठ सार जीव कांड सार नाम से हमें ग्रंथ संकलित करके दिया, जिसका स्वाध्याय चल रहा है। मुख्य रूप से इसमें जीव द्रव्य को बताने के लिए 20 प्ररूपणाएं कही हैं और प्ररूपणा का मतलब है विस्तार से कथन, प्ररूपित करना, वर्णन करना, वह प्ररूपणा है। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्नाओ या उ ओगो व्य कमसो विषम परोणा मणिदा। इन्हें 14 मार्गना 14 वेद रूप कही, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग और 14 मार्गनाएं, तो 14 और 6 20 हो गई। 20 प्ररूपणाओं को कहने की प्रतिज्ञा करके सबसे पहली प्ररूपणा उसमें जो है गुणस्थान, गुण जीवा का ना, तो गुण माने गुणस्थान। गुणस्थान के 14 भेद किए, 14 भेद ही होते हैं। उनमें से मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, इन 4 गुणस्थानों का स्वरूप आप समझ चुके हैं और ये भी उसका तथ्य जान चुके हैं कि हमें अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त करके दर्शन मोनी कर्म की 7 प्रकृतियों यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो साधी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है उसको हम सब प्राप्त करके और पुनः अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन में हम हैं, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक होने के बाद एक बार अंतर्मुहूर्त के अंदर नियम से वो छूटता ही छूटता है। उसके बाद जीव चाहे तो मिथ्यात्व में चला जाए और चाहे तो वेदक सम्यक यानी क्षयोपशम सम्यक को प्राप्त कर ले। आपने जाना इसमें कि अविरत सम्यक दृष्टि व्रत नहीं होते हुए भी सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव रहता है कि उसकी मिथ्या दृष्टि जीव के समान अनर्गल चर्या नहीं होती और वह जीव जो है निचम कम्मक खमण हेदु, ये गाथा नंबर 10 में बहुत ही प्रमुख बात कही है, मुख्य बात कि उसमें चल मलिन अगाढ़ ये दोष लगते हुए भी उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते और वह सम्यक दर्शन नित्य ही कर्म के क्षपण का हेतु भी होता है। इसलिए कहा कि वह मिथ्या दृष्टि के समान उसके अनर्गल चर्या कभी भी नहीं होती, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव के कर्म कांड की अपेक्षा जो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान की और 25 प्रकृतियां सासाधन गुण स्थान की, ये 41 प्रकृतियों का अनुदय हो जाता है, अबंध हो जाता है चतुर्थ गुण स्थान में। इसलिए इन कर्मों के बंद की कारणभूत प्रवृत्तियां भी उसके नहीं होती और ना उसका होना वहां पर संभव रहता है, इसलिए उनकी अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति में नीचे के तीन गुण स्थान वालों की अपेक्षा बहुत बड़ा अंतर हो जाया करता है। इसलिए आप खुद भी समझना, आप सब देव सात गुरु के सच्चे श्रद्धानी हैं, इसलिए चौथा गुण स्थान तो आपके पास है ही है। इतना समझ के चलना, ये मत सोचना कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि, नहीं तो संशय में चले जाओगे, नहीं मिथ्यात्व में चले जाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखना कि हमने अनंतानुबंधी कसाय समाप्त कर दी है और उसका उदय न आने पाए, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता चला जाए। एक दिन ये छह ऑप्शन सम्यक दर्शन छायक में परिवर्तित हो, केवली केवली भगवान का पादमूल चतुर्थ काल में प्राप्त हो और छायक सम्यक दर्शन हमको मिल जाए। अब हम चलते हैं देश विरत नाम की पंचम गुण स्थान की ओर। गाथा नंबर है 14। पच्चखानुदयादो संजम भावो नहो दिनवरिंतु हो वदो हो दितदो देश वदो हो दि पंचमो सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। पच्चखानुदयादो संजम भावो नहो दिनवरिंतु हो वदो हो दितदो देश वदो हो दि पंचमो प्रत्याख्यानोदयात् संयम भावो न भवति नवरितु स्तोक व्रतो भवति ततो देश व्रतो भवति पंचमः। श्लोक का अर्थ, गाथा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय के उदय रहने से संयम भावो न भवति, संयम नहीं होता है, सकल संयम नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग और त्याग पर अभी आवरण पड़ा है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय जब तक है तब तक सकल संयम को ग्रहण करने के भाव नहीं हो सकते। तब उस अवस्था में क्या है, यहाँ पर ये विशेषता है नवरिम मने, किंतु इसमें ये विशेषता है थोब वदो मने स्तोक व्रतो, यानी कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं है वहां। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहाँ चली गई, चतुर्थ के अंत में खत्म हो गई, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होने से यहाँ पर एक देश व्रत होते हैं। देश वदो होदि पंचमो, देश व्रत एक देश व्रत होते हैं, यानी पांचों पापों का एक देश त्याग हो जाता है। तो उनके जो है इस गुण स्थान का नाम इसलिए कहा पांचवा देश व्रत नाम का गुण स्थान है और इस गुण स्थान में रहने वाला देश व्रती कहलाता है, देश संयमी कहलाता है। ये आपको विशेष रूप से जानना है कि पंचम गुण स्थान में रह करके मनुष्य तिर्यंचों के ही पंचम गुण स्थान मिलता है। तो तिर्यंच भी जब सम्यक दर्शन को धारण करते हैं तो प्रायः सारी कथाओं में कहानियों में आता है, चाहे सिंह हो चाहे हाथी हो, इन लोगों ने जब मुनिराज से सम्यक दर्शन को धारण किया तो साथ साथ में देश व्रत को भी धारण किया। उनकी भाषा हमें नहीं समझती तो क्या हुआ, लेकिन भाव उनके केवल ज्ञानी ने देखा तो बताया कि तिर्यंच और मनुष्य दो ही हैं जिनकी पांचवा गुण स्थान हो सकता है। अब तिर्यंचों के उससे आगे नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्यों के उससे आगे की गुण स्थान भी होती हैं। तो प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ समझना पूर्ण त्याग और सकल संयम, पूर्ण त्याग से ही पांचों पापों के पूर्ण त्याग से ही सकल संयम होता है। इसलिए उसको आवृत करने वाली, उसके ऊपर आवरण डालने वाली कषाय जो है उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। आवरण का मतलब है ढकना, यानी त्याग के ऊपर अभी आवरण पड़ा है। तो उस एक देश व्रत नाम के इस उच्चारण से ही स्पष्ट हो जाता है कि पंचम गुण स्थान में पांचों पापों का एक देश त्याग होता है। घर में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को ये गुण स्थान हुआ करता है। इसलिए गुण स्थान की श्रृंखला में हमने आपको ये पंचम गुण स्थान की बात आज बताई है।